नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, आज दुनिया में भारत को शांति दूत के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के संदेश खारी में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामलों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार मुख्य ऋण दरों में कोई बदलाव नहीं किया। भारत ने कहा वो फलस्तीन और इसराइल के लिए टू स्टेट समाधान के प्रति वचनबद्ध। भारतीय मुक्केबाज आर्यन, यशवर्धन सिंह, प्रियांशु और साहिल कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया में भारत को शांति दूत के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि भारत जब अपनी स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब ये एक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लेगा। श्री मोदी ने आज गुजरात के आणंद और सुरेंद्रनगर में दो जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर चुका है। आज बाद में श्री मोदी का जूनागढ़ और जामनगर में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग को न्याय की गारंटी देता है। आम आदमी पार्टी की नेता सुनीता केजरीवाल भी राज्य में प्रचार कर रही हैं। उन्होंने आज भावनगर और भरूच के उम्मीदवारों के समर्थन में बोटाड और डेडियापाड़ा में रोड शो किया। कर्नाटक में आज कई स्टार प्रचारक चुनाव अभियान कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिवमोगा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी रायचूर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी कई स्टार प्रचारक 14 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार कर रहे हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज बेलगावी, उत्तर कन्नड़ और धरवाड़ में चुनाव प्रचार करेंगे। तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई बागलकोट और बीजापुर में प्रचार करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा कारंदलाजी और ए नारायण स्वामी भी आज कर्नाटक में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीमांचल बिहार के अररिया में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व ने देश को कोविड महामारी से लड़ने की ताकत दी है। संकट के समय में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने टीकाकरण को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सारण और सुपौल में लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और समस्तीपुर, सहरसा और अररिया में चुनावी रैलियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के कई स्टार प्रचारक रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी यहां एक रैली को संबोधित करेंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पार्टी उम्मीदवारों के लिए बरेली, बदायूं और सीतापुर जिलों में प्रचार करेंगे। बाद में शाम को वो लखनऊ में पार्टी संगठन की बैठक का नेतृत्व करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज बदायूं और आंवला लोकसभा क्षेत्रों में और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी हाथरस लोकसभा क्षेत्र के सादाबाद क्षेत्र में एक राजनीतिक सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने 6 लोकसभा क्षेत्रों से पार्टी उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है और एक विधानसभा क्षेत्र में 5वें चरण में उपचुनाव होंगे। पार्टी ने आजमगढ़ और डुमरियागंज सीट से अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। अब श्रीमती सबीहा अंसारी की जगह मशहूद अहमद आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम पश्चिम बंगाल की मालदा उत्तर लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
मालदा उत्तर संसदीय क्षेत्र 2009 के लोकसभा चुनाव से अस्तित्व में आया। उससे पहले केवल एक निर्वाचन क्षेत्र मालदा था। बरकत के नाम से मशहूर एबीए गनी खान चौधरी आखिरी बार 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से मालदा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव से मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण सीट अस्तित्व में आई। मालदा उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हबीबपुर, मालदा, गजोल, रतुआ, चंचल, मालतीपुर और हरिश्चंद्रपुर हैं। मालदा उत्तर में तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होगा। मालदा उत्तर से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के श्री खगेन मुर्मू उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मौसम नूर को 5% के अंतर से हराया था। इससे पहले मौसम नूर ने 2009 और 2014 में कांग्रेस के टिकट से ये सीट जीती थी। बीजेपी ने मालदा उत्तर सीट पर खगेन मुर्मू को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रसून बनर्जी को मैदान में उतारा है। प्रसून बनर्जी ने रायगंज रेंज के आईजी पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने आलम मुस्ताक को मैदान में उतारा है। मालदा उत्तर सीट पर 5 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। यहां कुल 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
चुनाव तब और भी प्रासंगिक हो जाते हैं जब आम जनता इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। चुनाव में जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग सालों से प्रयासरत है। आयोग विशेष रूप से कमजोर आदिवासियों को जागरूक करने तथा उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
पिछले 2 वर्षों में चुनाव आयोग ने कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इसके तहत आयोग ने मतदाता सूची में इन वर्ग के लोगों को शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया और जागरूकता शिविर लगाए। आयोग के ऐसे प्रयासों से ही कर्नाटक और उड़ीसा में इन वर्ग के लोगों का मतदाता सूची में 100% नाम अंकित हो पाया। आयोग द्वारा केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पीवीटीजी वर्ग के लोगों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए, जिसके चलते उनकी चुनाव में भागीदारी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान कमजोर जनजातीय समूहों वाले इलाकों में पर्यावरण अनुकूल मतदान केंद्र भी बनाए गए। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों में अपनी जांच पर कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थिति की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी। ये रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ को सौंपी गई है। रिपोर्ट सौंपते समय सीबीआई के वकील ने एजेंसी के अधिकारियों को संदेशखाली के जमीन रिकॉर्ड प्रदान करने में राज्य सरकार के असहयोग की भी शिकायत की। सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी के समर्पित पोर्टल पर संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने से संबंधित लगभग 900 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि जमीन रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति जानने में राज्य सरकार के सहयोग के बिना जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कठिनाई होगी। इस बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार को सीबीआई को सभी आवश्यक सहयोग देने के निर्देश भी दिए ताकि जांच की प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को इस साल विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुश्री बर्मन को यह पुरस्कार हरगिला नाम से प्रसिद्ध ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी के संरक्षण हेतु उनके अथक प्रयासों के कारण दिया गया। श्री पूर्णिमा ने कामरूप जिले में स्थानीय लोगों की मदद से हरगिला के संरक्षण के लिए हरगिला आर्मी का गठन किया। विश्व में हरगिला प्रजाति की सबसे ज्यादा संख्या कामरूप जिले में है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सुश्री बर्मन को ग्रीन ऑस्कर नाम से विख्यात विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज तक पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार में भीषण लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि इस प्रकार की स्थिति शुक्रवार तक भारत के दक्षिणी हिस्सों में बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने बताया कि अगले 5 दिन तक तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में गर्म और आर्द्र मौसम जारी रहेगा।
बंगाल में जहां काफी दिन से सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रहा है वो अभी भी जारी है। हमारा जो फोरकास्ट है अगले 2 दिन के लिए ऐसा ही सीवियरिटी बंगाल में बनी रहेगी और ये रीजन में इसलिए हमने 2 दिन तक रेड अलर्ट कंटिन्यू करके उसके बाद धीरे धीरे ऑरेंज अलर्ट में जा रहे हैं। ये हमारा कई दिन से फोरकास्ट था और ये अभी भी हमारा बरकरार रहेगा। उड़ीसा में आज से ही ऑरेंज अलर्ट कर दिया है अगले 4 दिन के लिए और बिहार और नीचे साउथ में कोस्टल आंध्र प्रदेश इन सभी राज्य में पूरा ईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया जहां हीट वेव का स्थिति बहुत गंभीर है वहां 4th दिन यानी कि 5 या 6 तारीख से हमारे उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत फलस्तीन और इसराइल की समस्या के लिए 2-स्टेट समाधान के प्रति वचनबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि भारत 2-स्टेट समाधान का समर्थन करता है जहां फलस्तीन के लोग सुरक्षित सीमाओं में एक स्वतंत्र देश में आजादी से रह सकेंगे। श्रीमती रुचिरा कंबोज ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले की निंदा की। उन्होंने ये भी कहा कि सभी परिस्थितियों में हर किसी को अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करना चाहिए।
As for India's position on the conflict, I will make the following points. One, the ongoing conflict between Israel and Hamas has led to a large-scale loss of civilian lives, especially women and children, and a humanitarian crisis which is simply unacceptable. We have strongly condemned the deaths of civilians in the conflict. We firmly believe that international law and international humanitarian law must be respected by everyone under all circumstances.
अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बाजार अनुमानों के अनुरूप लगातार 6ठी बार प्रमुख ऋण दरों में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25 से 5.50% पर स्थिर रखा है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 2 दिन की बैठक के बाद अमेरिका के शीर्ष बैंक ने कल रात ऋण दर में बदलाव नहीं करने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा ग्रैंडमास्टर की उपाधि से सम्मानित भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू ने कहा है कि भारत इस खेल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आगामी विश्व चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करेगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने भारतीय शतरंज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के योगदान की सराहना की। कजाखस्तान के अस्ताना में खेली जा रही एशियाई अंडर 2020 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज आर्यन, यशवर्धन सिंह, प्रियांशु और साहिल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आर्यन ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के जुराएव शकरबॉय को 5-0 से हराकर भारत के लिए बेहतरीन शुरुआत की। इसके बाद यशवर्धन ने 63.5 किलोग्राम वर्ग में ईरान के मीर अहमदी बाबा हैदरी पर 4-1 से जीत दर्ज की। प्रियांशु का 71 किलोग्राम वर्ग में और साहिल का 80 किलोग्राम वर्ग में चीनी ताइपे के वू यूएन और तुर्कमेनिस्तान के यकलिमोव अब्दुलरहमा के साथ मुकाबला रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट निर्णय के साथ समाप्त हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने कहा आज दुनिया में भारत को शांति दूत के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामलों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक ने लगातार 6ठी बार मुख्य ऋण दरों में कोई बदलाव नहीं किया। भारत ने कहा वो फिलिस्तीन और इसराइल के लिए 2-स्टेट समाधान के प्रति वचनबद्ध। भारतीय मुक्केबाज आर्यन, यशवर्धन सिंह, प्रियांशु और साहिल कजाखस्तान के अस्ताना में एशियाई अंडर 2020 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।